ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम अध्याय 18 श्लोक संख्या 6 वेदान् जुगान्ते तमसा तिरस्कृतान् वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रह रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रह प्रत्याददेवै कवये भियाचते प्रत्याददेवै कवये भियाचते तस्मै नमस्ते वितथे हितायेति तमसै नमस्ते वितथे हितायेत वेदान् जुगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रह प्रत्याददेवै कवये भियाचते तस्मै नमस्ते वितथे हितायिति तमसै नमस्ते वितथे हितायिति माताजी वेदान चारों वेदों को युगंते कल्प के अंत में तमसा साक्षात अज्ञान रूपी दैत्यों द्वारा तिरस्कृतान चुराए जाकर रसातलतात रसातल निम्नलोक यह जो नृतुरंग विग्रह आधा घोड़ा तथा आधा मनुष्य का रूप धारण करने वाले प्रत्यादे लौटा दिया वय निश्चय हैं कवये परम कवि ब्रह्मा को अवियाचते उनके मांगने पर तस्मै उनको नमः मेरा नमस्कार है ते आपको अवितत इति इहिताय जिसका संकल्प विफल नहीं होता इति इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य अनुवाद कल्प के अंत में साक्षात ज्ञान दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुराकर उन्हें रसातल ले गया किंतु श्री भगवान ने है ग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प श्री भगवान मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। पुनरावृत्ति करें कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुरा कर उन्हें रसातल ले गया किंतु श्री भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प श्री भगवान मैं आपको साधारण नमस्कार करता हूं। तात्पर्य यद्यपि वैदिक ज्ञान अनश्वर है किंतु इस भौतिक जगत में कभी वह प्रकट होता है तो कभी लुप्त होता रहता है। जब इस भौतिक जगत के प्राणी अज्ञान में डूब जाते हैं तो वैदिक ज्ञान लुप्त हो जाता है किंतु भगवान हयग्रीव अथवा मत्स्य भगवान वैदिक ज्ञान की सदैव रक्षा करते हैं और वह ज्ञान यथासमय ब्रह्मा जी के माध्यम से पुनः वितरित होने लगता है। ब्रह्मा जी ही श्री भगवान के विश्वास पात्र प्रतिनिधि हैं अतः जब उन्होंने वैदिक ज्ञान कोश की पुनः याचना की तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसि नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। प्रस्तुत श्लोक का शीर्षक है जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। आप पहले श्रवण कर चुके हैं कि जब महाराज प्रियव्रत ने अपना रथ सूरज के पीछे हाँका तो उस रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में सात समुद्र हो गए और भूमंडल सात द्वीपों में विभाजित हो गया। सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए और संकल्प किए कि मैं रात्रि को दिन में पलट दूंगा। जो भगवान सूर्य हैं वे सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो छह महीने उत्तरायण रहते हैं और छह महीने दक्षिणायन रहते हैं। तो जब भगवान सूर्य छह मास तक उत्तर दिशा में रहते हैं तो उस समय ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है और जब दक्षिण दिशा में रहते हैं दक्षिणायन रहते हैं तो शीत ऋतु का शरद ऋतु का प्रभाव रहता है। महाराज प्रियव्रत एक बहुत बड़े तपस्वी बलशाली एवं प्रतिभाशाली राजा थे। भगवान की कृपा से इनके पास असीम शक्ति थी। तप के प्रभाव से ये शक्तिशाली हो गए थे और अपने तप के प्रभाव से ही वे एक बहुत शक्तिशाली सूर्य के समान ही दिव्यमान रथ आविष्कार किए और उसी रथ पर चढ़कर वे सूर्य के पीछे पीछे चलते थे। जब भगवान सूर्य दक्षिण दिशा से परिक्रमा करके उत्तर दिशा में जाते हैं तो दक्षिण दिशा फिर अंधकारमय हो जाता है। जब उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में आते हैं तो उत्तर दिशा का जो पक्ष है वो अंधकारमय हो जाता है। तो महाराज प्रियव्रत ने यही सोचा कि मैं अंधकार को प्रकाश में मतलब रात्रि को मैं दिन में पलट दूंगा प्रजाजनों को खुश करने के लिए। या प्रभुपाद जी व्याख्यान देते हैं कि भौतिक लाभ को अधिक प्रदान करने के लिए महाराज प्रियव्रत ने ऐसा सोचा। ऐसे भगवान सूर्य से उनको कोई द्वेष नहीं था तो उनके रथ की परिधि से सात समुद्र हो गए। तो जैसे उस समुद्रों के नाम है खारा जल इक्षुरस माने एक का रस मदिरा का समुद्र घी का समुद्र दूध का समुद्र मट्ठा का समुद्र और मीठा जल का समुद्र ये सात समुद्र हैं और ये सातों समुद्र सात द्वीपों से घिरे हुए हैं। सात द्वीप हैं। द्वीप का अर्थ होता है टापू भूमि का वह टुकड़ा जो चारों ओर जल से घिरा हो उसको हम द्वीप कहते हैं। चारों तरफ जल हो और बीच में कोई भूमि हो, जगह हो, टीला हो, उसको द्वीप कहा जाता है। तो ये जो सात समुद्र हैं, अभी अभी हम लोग खारा जल के समुद्र को देख रहे हैं, तो इस समुद्र के बाहर बहुत बड़ा पर्वत है, सात द्वीप हैं, सात द्वीप हैं। ये खारा जल समुद्र से बाहर एक द्वीप है जिसको जम्बू द्वीप कहा जाता है, और उसके बाद पुनः एक दूसरा समुद्र है जिसको इक्षुरस, जो इक्षरस से भरा हुआ है, उसके बाद फिर एक क्रौंच द्वीप है। ये सात द्वीपों का वर्णन किया जाता है, जम्बू द्वीप और पलक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये सात द्वीप हैं। तो इन सात द्वीपों में से हम लोग जम्बू द्वीप के वर्णन सुन रहे हैं। तो जम्बू द्वीप जो है, इसका वर्णन किया जाता है कि इसे जम्बू द्वीप में, जम्बू मतलब जामुन, जामुन का द्वीप, वो जो द्वीप है वहां जो टीला है उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। और श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। तो जो जम्बू द्वीप है यह है लवण सागर से घिरा हुआ है। प्रत्येक द्वीप एक दूसरे द्वीप से घिरा हुआ है। लवण सागर के जम्बू द्वीप, लवण सागर के बाद जो दूसरा द्वीप आ रहा है उसको हम इक्षुरस द्वीप कहते, पलक्ष द्वीप कहते हैं। फिर उसके बाद मदिरा का जो समुद्र है वो सालमली द्वीप से घिरा हुआ है। प्रत्येक द्वीप एक दूसरे से घिरे हुए हैं। एक समुद्र के पास दूसरा पर्वत है, इसके बाद दूसरा समुद्र है, इसके बाद फिर पर्वत है, फिर दूसरा समुद्र है, इस प्रकार से सात द्वीप हैं। ये सात द्वीप कैसे बन गए? महाराज प्रिय व्रत के रथ के चक्के से, पहिए की लकीरें से ये सात द्वीप हो गए और सात समुद्र बन गए भगवान की कृपा से। तो इन सात द्वीपों से हम लोग जम्बू द्वीप का वर्णन सुन रहे हैं। तो जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया है कि इसका विस्तार 1,00,000 योजन में है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, 9 वर्ष हैं, और 9 वर्षों में से हम लोग 9 वर्षों का नाम इस प्रकार से है। जो 9 वर्ष हैं वे हैं नाभि, भद्राश्व, हरिवृष, केतुमाल वृष, रम्यक वृष, हिरण्य वृष, कुरु वृष, केम पुरुष, भारतवर्ष, इन सब वर्षों का वर्णन है। तो महाराज जम्बू द्वीप के अंदर सुमेरु पर्वत है, इलावित वृष जो है उसके अंदर भगवान शिव रहते हैं, शिव पार्वती जी शंकरषण देव की आराधना करते हैं। तो इलावित वृत्त के अंदर एक सुमेरु पर्वत है और वह पर्वत सोने का है, जिस पर्वत पर सातकुम्भी नामक नगरी है, जो ब्रह्मा जी, जहां ब्रह्मा जी की सभा है। तो सुमेरु पर्वत सोने का है और इस पर्वत का जो विस्तार है, वर्णन किया गया है कि 1,00,000 योजन यह पर्वत ऊंचा है और 16,000 योजन भूमि के भीतर है। इस पर्वत को कोई हिला नहीं सकता है। एक कवि बहुत सुंदर चित्रण किया है कि पैसिंधु का दूध फटेगा नहीं, चाहे नींबू का अर्क मिलाते रहो, यह शैल सुमेरु हिलेगा नहीं, चाहे लाखों मनुष्यों हिलाते रहो, क्योंकि इसकी जड़ धरती तक है, सोने का पर्वत है, कोई नहीं हिला सकता है। और इस जामुन वृक्ष की विशेषता है कि जम्बू द्वीप का जो जामुन है, जो जामुन का जो पेड़ है, उसमें जो फल लगते हैं वे हाथी के आकार के फल लगते हैं, मतलब विशाल फल होते हैं, और उसकी जो गुठली होती है बहुत छोटी होती है, अब गूदा उसमें ज्यादा रहते हैं, रस ज्यादा रहते हैं, तो जब वे ऊपर से गिरते हैं नीचे आते हैं तो वे फट जाते हैं, और फट करके वे नदी का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए उसको जंबो नदी कहा जाता है। और सूर्य के ताप से और हवा के प्रभाव से जब वे सूख जाते हैं, हैं? कीचड़ रूपी जो जंबू रस है, जब वो सूख जाते हैं तो वे सोने के रूप में परिणत हो जाते हैं। जंबू द्वीप के जो रस हैं जामुन के, वे स्वर्ण बन जाते हैं, सोने बन जाते हैं, और उन सोने का सोनों का उपयोग मतलब स्वर्गवासी करते हैं। पृथ्वी लोक से ऊपर है जंबू द्वीप, स्वर्गवासी उसका विभिन्न प्रकार के आभूषणों को बना करके प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोग सुने कि प्रत्येक जो द्वीप है एक दूसरे द्वीप से घिरा हुआ है, जंबू द्वीप क्रौंच एक दूसरे से घिरा हुआ है, और सभी एक दूसरे से दुगने हैं। 1,00,000 योजन का विस्तार का जंबू पर्वत है, इसका दुगना फिर पलक्ष द्वीप है, फिर उसके दुगना दूसरा तीसरा है, फिर चौथा है, प्रत्येक एक दूसरे से दुगने हैं। तो महाराज प्रियव्रत के याद रखें 10 पुत्र थे, जिनमें 3 ब्रह्मचारी हो गए, कवि महावीर और सवन, बाकी 7 राजा बने। जो 7 राजा बने वे 7 द्वीपों के राजा बने, ये 7 जो द्वीप है ना वे 7 द्वीपों के राजा बने। तो महाराज प्रियव्रत के सबसे बड़े पुत्र थे आग्नेन्द्र, जो आग्नेन्द्र थे वे जंबू द्वीप के राजा बने, और महाराज आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए जो 9 वर्षों के राजा हुए। तो जंबू द्वीप के अंदर 9 वर्ष हैं। वो कौन कौन है उनका नाम गिनाया गया है, नाभि, किम पुरुष, हरिवरस, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, पुरुव, भद्राश्व तथा केतुमाल, ये 9 वर्ष हैं। तो आग्नेन्द्र के जो पुत्र हैं ये 9 वर्षों के अधिपति बने। तो यहां पर भद्राश्व वर्ष का वर्णन चल रहा है, जंबू द्वीप के अंदर 9 वर्षों में 1 वर्ष है भद्राश्व वर्ष, उसका वर्णन चल रहा है। तो भद्राश्व वर्ष में धर्मराज के पुत्र भद्र सर्वा निवास करते हैं, और ये भद्र सर्वा राज की समस्त वासियों समेत वासुदेव के स्वांश हय शीर्ष की पूजा करते, माने हय गृह भगवान की पूजा करते हैं। तो भद्राश्व वर्ष में भगवान हय गृह की पूजा की जाती है। जितने भी वर्ष हैं 9 वर्ष में, सभी वर्षों में अलग अलग भगवान के अवतारों की पूजा की जाती है। जैसे ही भद्राश्व वर्ष है तो इसमें भद्र सर्वा जी जो धर्म के राज्य के पुत्र हैं 6 माने 5 श्लोकों से भगवान की स्तुति किए हैं, उन्हीं स्तुतियों में से यह एक श्लोक है, अंतिम श्लोक है, ये 6ठा श्लोक है। तो इस वर्ष के बाद जो हरि वर्ष आएगा उसमें भगवान नरसिंह देव रहते हैं, उसे प्रहलादी उनकी आराधना करते हैं, वो कल आप श्लोक श्रवण करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक यही है कि वेदान जुगान्ते तमसा तिरस्कृतान रसातलाद्यो नितुरंग विग्रह पर्थ्याद देवे कवये भियाचते तस्मै नमस्ते वितथे हितायते। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान दैत्य का रूप धारण करके सभी वेदों को चुरा कर उन्हें रसातल ले गया, और जिन्हें किंतु भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी के विनय प्राप्त करने पर उन्हें ला करके दे दिया। हे सत्य संकल्प श्री भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो इसमें प्रस्तुत श्लोक का जो भावार्थ है मुख्य, इसका यही निष्कर्ष है कि भगवान समय अनुसार जब ज्ञान लुप्त हो जाता है तो ज्ञान की रक्षा करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को धारण करके ज्ञान की रक्षा करते हैं। तो एक हयग्रीव नाम का बहुत बड़ा असुर था। हयग्रीव, हय का मतलब होता है घोड़ा, ग्रीव माने गर्दन, घोड़े जैसा जिसका स्वरूप हो। इसमें नृतुरंग कहा गया है, नृतुरंग विग्रह माने आधा घोड़ा और आधा मनुष्य। आधा घोड़ा और आधा मनुष्य का मतलब जो धड़ है ये मनुष्य का हो और जो सिर है वे घोड़े का हो, उन्हें हयश्रेष कहते हैं। तो हयश्रेष ये असुर हैं और ये दिति के पुत्र हैं। असुर दिति के ही पुत्र होते हैं, दिति के पुत्र सब दानव होते हैं। वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे हुए थे तो उस समय मधुकैटभ नाम के दैत्यों ने वेदों को हरण कर लिया और तुरंत रसातल में पहुंच गए। तो वेदों को हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ, कहा कि वेदों के ही चलते मैं सृष्टि रचना का कार्य करता हूं, वेद ही हमारे बल हैं, यदि वेद नहीं रहेंगे तो मैं सृष्टि कैसे कर पाऊंगा। जब मधुकैटव चुरा कर ले गए तो उस समय वे भगवान की शरण में गए, भगवान की स्तुति किए और उनकी स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके हयग्रीव नामक असुर का वध किए। एक बातों पर ध्यान दें, हयग्रीव एक भगवान का अवतार है और हयग्रीव नाम का एक असुर भी है। तो हयग्रीव जो असुर था वो दिति का पुत्र था और वह देवी की आराधना करके देवी को प्रसन्न कर लिया था और देवी से वरदान मांगा कि हे देवी मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई न मारे। तो देवी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और दूसरा कोई मांग लो। तब उसने कहा ठीक है, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे ही जैसा कोई रूप धारण करके मुझे मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता है। तब भगवान ने हयग्रीव का स्वरूप धारण किया, उसी असुर के जैसे ही भगवान ने हयग्रीव का स्वरूप धारण किया और उसका वध कर उस वेद को ब्रह्मा जी को प्रदान किए, जो ज्ञान को चुरा लिया था वेद को फिर ब्रह्मा जी को दे दिए। तो इस प्रकार से हयग्रीव अवतार लेकर के भगवान ने हयग्रीव असुर का नाश किया। तो भगवान ज्ञान के प्रवर्तक हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं और ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसमें जो छह श्लोक हैं, छह श्लोकों में से जो दूसरा श्लोक है स्तुति में वर्णन किया गया है कि ये जो भद्रश्रवा जी हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले आप हैं और समस्त धार्मिक विधानों के आगार हे भगवान हयग्रीव, आपको हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार है, स्वीकार हो। तो हयग्रीव मतलब भगवान के बहुत से अवतार हैं, जैसे कुमार, शुकर, नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, हयग्रीव है, हंस, बोध, कल्कि, बहुत से अवतार हैं। ये जितने भी अवतार हुए हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए हुए हैं। कहते हैं भद्रासव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप समस्त धर्मों के आधार हैं, मतलब खजाना हैं, आप धर्म के प्रवर्तक हैं, जैसे जैसे धर्म की गलानी होती है वैसे वैसे आप अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और इस प्रकार से स्तुति करते हुए भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभो, अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम घनंतम जनोयम हे मिशन न पश्यति। हे प्रभो, आप की जो लीला है बहुत विचित्र है। अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम, हे प्रभो आप विचित्र हैं, मतलब आश्चर्यजनक हैं। आप आपकी जो कार्यकलाप हैं अद्भुत कार्यकलाप हैं, और आप जैसा कोई आश्चर्यजनक वस्तु आश्चर्यजनक तत्व इस संसार में कोई नहीं है। सबसे बड़े आश्चर्यजनक तत्व आप हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। जिस समय अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को मथुरा से लेकर के नंदगांव से लेकर के मथुरा जा रहे थे, तो बीच में जमुना जी पड़ती हैं, तो भगवान कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए थे और अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना जी में गए, डुबकी लगाए। जब डुबकी लगाते हैं अक्रूर जी यमुना जी में, तो देखते हैं कि जो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं वे जल के अंदर दिख रहे हैं, भगवान उनको दिखाई दिए। फिर डुबकी फिर सिर को ऊपर किए, फिर ऊपर देखते हैं तो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए हैं। फिर कह रही ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं मुझे भ्रम हो गया क्या। फिर डुबकी लगाए तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण हजार फण वाले शेष नाग के ऊपर शयन किए हुए हैं, विराजमान हैं, और बहुत से देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर सिर जल से ऊपर किए, जल से ऊपर फिर देखते हैं कि भगवान रथ पर बैठे हुए हैं। तो जब स्नान करके जब अक्रूर जी भगवान की स्तुति किए, इसके बाद में जब आए कृष्ण बलराम के पास, तो भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि चाचा जी क्या आपने कोई अद्भुत वस्तु देखा है क्या, आपने कोई आश्चर्यजनक वस्तु को देखा है क्या। तब अक्रूर जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपसे कोई अद्भुत कोई आश्चर्यजनक वस्तु नहीं है, सबसे बड़े आश्चर्यजनक अद्भुत व्यक्ति आप ही हैं, और जितने भी आश्चर्य हैं वे सब आपके अंदर समाहित हैं, मतलब आपसे बढ़कर दूसरा कोई आश्चर्य नहीं है। अहो विचित्रम, विचित्रम का मतलब है आश्चर्य, मतलब आश्चर्य का मतलब है अद्भुत कार्यकलाप। जैसा भगवान कार्य कर सकते हैं वैसा कोई कार्य नहीं कर सकता है। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने कानी अंगुली के नख पर, बाएं हाथ के कानी अंगुली के नख पर सात कोश का गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिए, सात दिन सात रात उठाए रखे, तो जितने भी ग्वाल बाल थे सब देख करके आश्चर्य में पड़ गए। यदि छोटा सा बालक जब इंद्र का मान मर्दन किए पर्वत को रख दिए, तो सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए कि सात वर्ष का बालक इतनी बड़ी विशाल पर्वत को उठा लिया, ये तो बहुत अद्भुत कार्यकलाप है, आश्चर्यजनक बात है। नंदी से पूछते हैं ये कैसे हो गया, इनके साथ हम लोग खेलते हैं सखा कहते, तो साक्षात भगवान मालूम पड़ते हैं। तब नंद जी बताया कि गर्गाचार्य जी कहते कि साक्षात भगवान नारायण के समान है, इसलिए इनकी सदैव रक्षा करते रहना, इस तुम सबकी रक्षा करेगा, देखभाल करते रहना। माने ग्वाल बाल भी आश्चर्य में पड़ गए देख करके, ये भगवान के अद्भुत कार्यकलाप है। सांप के फण पर नृत्य कर लेना, छह दिन की अवस्था में पुतना का वध कर देना, जितने भी भगवान के कार्यकलाप हैं ये आश्चर्यजनक है। नारद जी गए द्वारका में भगवान का घर देखने के लिए कि भगवान किस तरह से अपने गृहस्थ आश्रम निभा रहे हैं, तो 16,108 भगवान के महल थे, और सभी महलों में देख रहे भगवान सबके साथ हैं और विभिन्न प्रकार की लीला कर रहे हैं। देख करके नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, गजब है प्रभु आपकी लीला, अद्भुत आपके कार्य कलाप हैं, हम आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। तो भद्रासव जी उसी प्रकार से जो भद्रसरवा है, ये भद्रासव वर्ष में जम्बूद्वीप के अंदर भद्रासव वर्ष में हैग्री भगवान की स्तुति करते हैं, हे प्रभु आपकी जो लीला है विचित्र है, आपने ऐसे घोड़े का स्वरूप धारण करके हैग्री नामक असुर का वध कर दिया, आपको हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। देखिए दो विचित्र बात है, एक तो भगवान सबसे बड़े विचित्र हैं, और दूसरी बात है कि जो भगवान की माया है वो भी सबसे बड़ी विचित्र है, आश्चर्यजनक देवी है भगवान की माया, बहुत बलवान है। इसमें वर्णन है, हम लोग छह श्लोकों का मतलब सारांश आज अंतिम श्लोक है, इसलिए इसको संक्षिप्त में हम बखान करते हुए जा रहे हैं। ये तीसरे श्लोक में है, भद्रसरवा जी बोल रहे हैं कि प्रभु आपकी जो लीला है विचित्र है, और साथ ही साथ चौथे वर्णन करते हैं कि आपकी जो माया है वो भी बहुत विचित्र है, आपकी माया को कोई पार नहीं पा सकता है। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र सभी आपकी माया से डरते हैं। प्रभु आपकी माया भी विचित्र है, जैसे आप अद्भुत हैं वैसे आपकी माया के भी अद्भुत कार्यक्रम है, कार्यकलाप है। भगवान मायाधीश हैं, भगवान माया को नचाते हैं और माया सारे जगत को नचाती है। तो इस श्लोक में यह सिद्ध किया गया है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भगवान की माया पछाड़ देती है। जो अपने को समझते हैं कि हमें माया नहीं, हमें मोहित नहीं कर सकती है, उसको भी माया मोहित कर डालती है। जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, ये सब देवता हैं, भगवान की माया ने इन्हें भी पछाड़ा है। मोहिनी स्वरूप धारण करके भगवान ने शिव जी को मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी को भी भगवान, देखिए जैसे जैसे उनके बछड़े थे, जैसे जैसे उनके मित्र थे, वैसे भगवान बन गए, साल भर तक बने रहे और ब्रह्मा जी को आश्चर्य में डाल दिए। और ब्रह्मा जी कहे, प्रभु आपकी माया बहुत ही विचित्र है, हम आपकी शरण लेते हैं। ब्रह्मा जी हार खा गए। और इंद्र, देखिए ये जो देवता है तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए माया इनको पछाड़ती रहती है। और भगवान तीनों गुणों से परे हैं, मायाधीश हैं, तो माया इनके अंदर कार्य करती है। तो इंद्र को भी अहंकार हो गया था कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं और मैं ही जगत का ईश्वर हूं। भगवान को भी इंद्र गाली देने लगे, कृष्ण को गाली देने लगे। भगवान ने उनका मान वर्धन करने के लिए उनका पूजन बंद कराया था। जब उनका मान वर्धन कर दिया तब इंद्र को ज्ञान हो गया और भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़े। प्रभु आपकी माया बहुत प्रबल है, बलवान है, आपकी माया, आप मायाधीश हैं, हम आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हैं। तो भगवान की जो माया है उस व्यक्ति को नचाती है जो व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी हो जाते हैं, भगवान उनके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। इसलिए अहंकारी कैसे होते हैं, धन का अहंकार हो जाता है, हमारे पास इतना धन है, बल का अहंकार हो जाता है, सौंदर्य का अहंकार होता है, हम बहुत सुंदर हैं, विद्या का अहंकार हो जाता है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे को टेढ़ी नजर से देखते हैं। भक्तों के अंदर भी कभी कभी ऐसा अहंकार आ जाता है, भक्तों को भी माया पछाड़ डालती है। तो माया पछाड़ डालती है, तो फिर माया से कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? भगवान ने खुद उपाय बताया है कि मेरी माया बहुत बलवान है, देवी ही सा गुण मई मम माया दुरत्या, तो माम में वे प्रपद्यंते माया में तम त्रंति थे, मेरे शरण में आ जाओ। तो कैसे शरण में जाए? भगवान कहते हैं सत्तम कीर्तियंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करते हुए मेरे शरण में आओ, तुम्हारा कभी पतन नहीं हो सकता है। जिनके नियम संयम ढीले पड़ जाते हैं उन्हीं को माया पछाड़ती है, उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो नमाचार्य हरिदास ठाकुर जैसे सुदृढ़ रहते हैं उनको माया कुछ नहीं कर सकती। जब नारद जी को भगवान की माया पछाड़ सकती है, ब्रह्मा जी को पछाड़ सकती है, शिव जी को पछाड़ सकती है, तो साधारण जीव किस गिनती में है? इसीलिए कहा जाता है कि अपनी मतलब अहंकार न करें, जो नियम है उसको सही ढंग से पालन करें तो आपका पतन नहीं होगा। जैसे खुलम खुला हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए, जैसे हम लोग भक्त हैं, धीरे धीरे आप सब सन्यासी हो जाते हैं, ये हमारी परंपरा है, सन्यासी सब आचार्य गण सन्यासी बने हुए हैं। अगर किसी भी सन्यासी का पतन हुआ है, हो जाता है, तो माया के चलते हो जाता है। स्त्री को साथ में रखने से, सेवा करने से, कराते 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 सेवा करते करते आकर्षण हो जाता है, पतन हो गया, क्योंकि आप दृढ़ नहीं रहे। श्री प्रभुपाद जी की वो अवस्था थी, जिस अवस्था में श्री प्रभुपाद जी विदेशों में प्रचार प्रसार करने गए, स्वर्ग की अप्सरा भी आएगी तो उनको कुछ नहीं कर सकती। वो कहते थे मुझे माया कुछ नहीं कर सकती है, हमारी स्थिति देखो, हम इस स्टेज की नहीं है, हमारा स्तर हाई लेवल का है। लेकिन जो बिल्कुल लो स्तर पर है, केवल सन्यासी का कपड़ा पहन लियो या ब्रह्मचारी का, और सामने माया आ जाए, तो मां स्वरूप के माता का स्वरूप उन्हें दर्शन करें, मां स्वरूप समझें। अगर उनकी आप सेवा में लगाते हैं तो सेवा करते 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 फिर घर्षण हो जाता है, अधिक वार्तालाप, आवश्यकता से अधिक बातें होने लगती है, फिर पतन हो जाता है। ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी, कोई भी जो सेवा में है वो उनकी पत्नी बन जाती है। तो पतन होने का मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, यदि आपका वीर्य अस्खलित हो गया ब्रिज अस्खलित हो गया तो आपका पतन हो गया, और आप जिस तत्व को चाहते हैं आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे विश्वामित्र का मेनका के साथ संबंध हो गया तो उसका पुण्य खत्म हो गया, फिर वह पुण्य अर्जित करने गया। तो अगर ब्रह्मचर्य व्रत आपका खंडित हो जाता है तो आप अनंत सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन याद रखें, माया भी साथ देती है, जो भगवान की माया है वो भी भक्तों को साथ देती है। और माया का अर्थ कृपा होता है, माया का अर्थ भ्रम होता है, हैं? माया का अर्थ ठगनी भी होती है। तो माया भी कभी कभी कृपा करती है। जैसे बिल्वगढ़ ठाकुर को देखिए, उस वेश्या ने भगवान के पास पहुंचा दिया, चिंतावणी ने, तुलसीदास की पत्नी ने भगवान के पास पहुंचा दिया फटकार मार करके। माया भी कृपा करती है जिसे जी भगवान के पास पहुंच जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को ही लीजिए, प्रभुपाद जी की जो धर्म पत्नी थी, तो प्रभुपाद जी शुरू में इनके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे, दूसरी के साथ विवाह करना चाहते थे। लेकिन इनके पिताजी कहे, नहीं, तुमको इसी के साथ विवाह करना है, क्योंकि वो जानते थे यदि कोई सुंदरी स्त्री आ जाएगी तो इसमें फंस जाएगा, फिर प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, इन्हीं के साथ तुमको शादी करनी। और पिता की आज्ञा को स्वीकार किए, और अंत में आपको देखिए, अंत में प्रभुपाद जी के साथ भगवान की कृपा से क्या हुआ, उनकी पत्नी को चाय पीने की आदत थी, अंत में बोले ना, तुम टी चाहती हो या मी चाहती हो, तो उसने कह दिया मैं टी चाहती हूं। मैंने प्रभुपाद जी से प्यारा चाय है उनको, उसी समय प्रभुपाद को वैरा गया, छोड़ दिए होती तो सहायता की उसमें। तो माया भी कृपा करती है। दो माया याद रखें, एक तो भक्ति महारानी है और दूसरी जो महामाया है दुर्गा जी हैं। माया और भक्ति दोनों स्त्री हैं, ध्यान से सुने, माया और भक्ति दोनों स्त्री हैं, और एक जीव को फंसाती है और एक जीव को छुड़ाती है। तो जो भक्ति महारानी, जो भगवान की अर्धांगिनी है, और भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, ये पूरा परिवार है। भक्ति है, ज्ञान वैराग, ये पूरा परिवार है, एक साथ रहते हैं। तो भक्ति महारानी की अनुगामिनी जो स्त्री होगी वो तो आपको वैकुंठ पहुंचा देगी, क्योंकि वो भगवान की दासी है, भगवान की सेवा करती है, वो आपको भगवान के पास पहुंचा देगी। लेकिन जो महामाया दुर्गा की अनुगामिनी है, वो भगवान की भक्ति करने को नहीं कहती है, भगवान के पास कोई आता है तो उसमें विघ्न उपस्थित करती है, तो वो तो आपको नरक पहुंचा देगी, वो माया आपको बाधक हो जाएगी। तो माया भी कभी कभी कृपा करती है। तो माया माने भक्ति महारानी के जो पुत्र ज्ञान वैराग हैं, तो ज्ञान और वैराग से युक्त रह करके हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहने का भाव है कि चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे हम गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चारों वर्णों के लोगों को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हम ब्रह्मचारी हैं तो अपनी मर्यादा में रहें, गृहस्थ हैं आप अपनी मर्यादा में रहें, वानप्रस्थी और सन्यासी सबके लिए बातें कही जा रही है, मर्यादा में रहिए। मर्यादा का मतलब धर्म की दायरा में रहिए, जो नियम बनाया गया उसके घेरे में रहेंगे तो आपका पतन नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो ज्ञान और वैराग, जो भक्ति महारानी के पुत्र हैं, उस ज्ञान को भूल जाते हैं। हम माँ पहले कहते हैं कि ये माँ है, जब माँ है तो क्या माता के साथ कभी गलत संबंध होता है पुत्र का? नहीं। जब ही आप उसको माता मानते हैं तो फिर आप गलत संबंध क्यों कर रहे हैं? यहां पर आप अज्ञान में पड़ रहे हैं। जो ज्ञान है, ज्ञान यही है कि सारा जीव भगवान का दास है, और हमारे वैष्णव परंपरा में ऐसे वर्णन किया गया है वैदिक शास्त्र में भी कि दूसरे के स्त्री को मां समझना चाहिए, जननी समझाना ही परनारी। तो जो दूसरे की स्त्री को मां के सदृश देखते हैं उनके हृदय में भगवान का भगवान निवास करते हैं। ये वाल्मीकि जी बोल रहे हैं राम जी से। और चेतन महाप्रभु के पास भी दो वेश्याएं आई थी, मां कहकर उन्हें पुकारा था। तो जब हम माता कहते हैं तो मां का भाव होना चाहिए ना, ये ज्ञान तो सदैव बना रहना चाहिए, ये तो कृष्ण भावना अमृत है। यदि हम मां का भाव रखेंगे तो फिर पत्नी की भावना कैसे आएगी? लेकिन लोग जिसको मां कहते हैं उसको पत्नी बना लेते हैं, ये बहुत दुख की बात है, पतन हो जाता है। पतन हो जाने का मतलब कि आप अपने स्वरूप, अपने अपने ज्ञान को खो दिया। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, माया का मतलब है भगवान को भूल जाना। जब तक आप ब्रह्मचर्य हैं, उस शास्त्र में सही ढंग से रहें, ये हमारी वैष्णव परंपरा है। तो मैंने भगवान की माया बहुत विचित्र है। अगर कोई कहे कि नहीं नहीं भगवान की माया विचित्र नहीं है, जैसे इस दृष्टांत को आप सभी सुने हैं और जानते भी हैं, जैसे वेद व्यास जी जब श्रीमद भागवत महापुराण की रचना किए तो तो लिखे कि मात्रा स्वस्त्रा दुहुत्रोआ, माने एक साथ कभी भी मां के साथ पुत्री के साथ नहीं बैठना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है कि किसी को कभी भी खींच सकती हैं। लेकिन उनके जो शिष्य जैमिनी थे वे स्वीकार नहीं किए, क्योंकि नहीं हम तो ज्ञानी हैं, जो माया को जानता है उसको माया कैसे पछाड़ सकती है, वो तो जानता है माया है, वो तो ज्ञानी व्यक्ति है, उसको माया नहीं पछाड़ सकती है। तो यहां आप लिखिए विद्वांसम अपि न कर्षति, विद्वानों को माया नहीं पछाड़ती है। और वेद व्यास जी ने कहा नहीं बेटा मैं सही बोल रहा हूं, विद्वानों को ज्यादा माया पछाड़ती है, जो ज्यादा जो प्रवक्ता बनते हैं ना, जो कथावाचक होते हैं, ज्यादा ज्ञानी बनते हैं, उनको माया ज्यादा पछाड़ती है। तो जैमिनी ने कहा नहीं हम नहीं मानते। तो वेदव्यास जी ठीक है समय आएगा तो तुमको पता चल जाएगा। उसी समय वे अपनी योग माया का प्रभाव किए, आंधी तूफान आने लगा, जोरों से जल बरसने लगा और संध्या समय एक सुंदर ज्योति वस्त्रों से मतलब भींगी हुई यमिनी के आश्रम में पहुंची और ऐसी वो साड़ी पहनी हुई थी कि उसके अंग प्रत्यंग सब दिख रहे थे, असुंदर स्वरूप था। यमिनी से उस स्त्री ने कहा कि महाराज आप हमारी रक्षा करें, मैं अपनी सखियों के साथ मन में भ्रमण करने आई थी, आंधी तूफान के कारण हैं, वर्षा के कारण मैं अपनी सखियों से भी छूट गई हूं, मैं आपकी शरण में आए हूं, आप मेरी रक्षा करें। यमिनी पहले फटकारे नहीं नहीं यहां जगह नहीं है, हमारे पास हमारे आश्रम में स्त्रियों का जगह प्रवेश नहीं है, स्त्री नहीं रहती है। तब उसने तर्क दिया कि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान शरणागत वत्सल हैं, भगवान के जो शरण में चला जाता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, त्यागते नहीं, और आप कैसे भक्त हैं, मैं अबला नारी हूं और आपके शरण में आए हैं, आपका शरीर दूसरे को उपकार के लिए है, आप हमारी समय रक्षा नहीं कर सकते हैं तो कौन रक्षा कर सकता है, भगवान को भी तो भगवान को भक्तों जैसा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। तो ये बातें उनको लग गई, कहा ठीक है इस कुटिया में रहो, कुटिया दे दी अलग, उसमें रहने लगी। अब देखिए माया का प्रभाव, वो अपने आश्रम में चले गए, अपनी कुटिया आश्रम में चली गई। रात्रि का समय हुआ तो जैमिनी तो देखे थे उसके स्वरूप को पूरा नख से सिख तक, जब शयन करने लगे तो उसकी छवि अब जैमिनी के मानस पटल पर आई और चिंतन करने लगा जैमिनी कितना सुंदर स्वरूप है। चिंतन करते 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 जैमिनी के इंद्रियों में आवेश आ गया, वाचो वेगम अनुसार क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम, वेग आ गया, आवेश आ गया। जब आवेश आ गया ये अपने को संभाल नहीं पाया और झट से जा करके उस ज्योति के किवाड़ को खटखटाता है जैमिनी, खटखटाया किवाड़ को, उस उधर से ज्योति बोलते कौन, तब मैं जैमिनी, क्या बात है किवाड़ खोलो। जैमिनी ने कहा भी था कि कोई कुछ भी कहे किवाड़ मत खोलना, तो कहा कि आपने तो कहा है किवाड़, कोई भी आए किवाड़ ना खोले, मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी। अब देखिए जैमिनी को नहीं रहा गया, सीधे जैमिनी कुटिया के ऊपर चढ़ गया, मुंजावटी से कुटिया बनी हुई थी, सीधे छप्पर को जैमिनी फाड़ डाला, यह है विषय का आवेश, छप्पड़ को फाड़ डाला और छप्पड़ को फाड़ करके सीधी जैमिनी नीचे कूद पड़ा। और जब वहां कूदता है तो देखता है क्या कि वेदव्यास जी पद्मासन लगा करके बैठे हुए हैं। अब तो देखते ही उनको भक्त मार दिया, अरे ये क्या हो गया, सारा काम बेग जो था बिल्कुल नष्ट हो गया और चरणों में गिर पड़ा जैमिनी, गुरुदेव आप मेरी रक्षा करें, आपने सही कहा था कि माया बहुत बलवान है, ज्ञानियों को भी जबरदस्ती माया पछाड़ती है, ज्ञानियों को भी कभी कभी पछाड़ देती है। जैमिनी कहा था ना कि ज्ञानियों को मैं नहीं पछाड़ती है, लेकिन यहां पर जैमिनी फेल हो गया। तो कभी कभी प्रवक्ता, इसलिए प्रवक्ताओं को भी वक्ताओं को भी सावधान रहना चाहिए, जो प्रवक्ता बनते हैं ना उनके पीछे माया ज्यादा लगती है, उनको भी पछाड़ डालती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। जैमिनी को तो वेद व्यास जी बचा लिए चलो उनकी रक्षा कर दिए, लेकिन सिद्ध किया गया है कि माया किसी को भी पछाड़ डालती है, लेकिन हम लोग मर्यादा का उल्लंघन कर डालते हैं तब आवश्यकता से बात करें, जितनी बात करनी है उतनी बात करें आवश्यकता से, आवश्यकता से अधिक बात करेंगे तो फिर आपका पतन हो जाएगा। जैमिनी जैसा ही आपको चिंतन होगा इंद्रियों में वैसे उत्तेजना आएगी और आपका पतन हो जाएगा, तो सावधान रहना चाहिए, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बातें हैं माया भगवान के विचित्र है, लेकिन जब तक से भगवान की कृपा नहीं हो सकती है तब तक से कोई भी व्यक्ति माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे आती महाराज
याति महाराज अपने बेटे पुरु की जवानी लेकर के हजार वर्षों तक दीवानी के साथ उपभोग किए और अंत में अपना जवानी लौटा दिए पुरु महाराज को, बेटे को दे दिए और अपना अनुभव प्रस्तुत किए कि जब तक से भगवान की कृपा नहीं हो सकती है तब तक से हृदय के अंदर जो विषय रूपी काई जमी हुई है, वासना जमी हुई है, वो वासना नहीं जा सकती है। सुसुप्त वासना भी जागृत हो जाती है, जब भगवान की कृपा हो जाए तो वासना शांत हो जाएगी। तो इसके लिए श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर बनना पड़ेगा, मतलब नियमों का सुदृढ़ता पूर्वक हम सभी को पालन करना पड़ेगा। कहने का भाव है यतंत्रश्च दृढ़ व्रता, इसलिए भगवान का दृढ़ रहो, हमेशा नाम जप करते रहो, स्वाध्याय में रहो, और हमेशा आप स्त्रियों से बात करते रहेंगे तो फिर होगा क्या? पतन निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। आवश्यकता से अधिक बात न करें तो माया भगवान की प्रबल है, किसी को भी पछाड़ देती है। जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो फिर गृहस्थ बन जाते हैं, मतलब अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने रक्षा करके बता दिया है कि सुदृढ़ता पूर्वक हम सभी को पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस श्लोक में माया की विचित्रता पर भद्रासव जी प्रकाश डाल रहे हैं और अंत में यही कह रहे हैं कि ज्ञान की रक्षा भगवान करते हैं। तो देखिए, सदैव हम लोगों को ज्ञान के शरण में रहना चाहिए। भक्ति मनानी के पुत्र हैं जो ज्ञान और वैराग, ज्ञान वैराग से युक्त रह करके हम सभी को भक्ति करनी चाहिए। ज्ञान का मतलब इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि किसकी भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और माया क्या है, सभी जानते हैं कि माया, भगवान की माया प्रबल है, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचारी आश्रम में हैं तब, या सन्यासी आश्रम में हैं तब, अगर गृहस्थों के लिए भी ये बात नहीं है कि उनकी पत्नी के साथ हैं तो दूसरे की स्त्री के साथ आप घूमते रहें। शिव जी किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं घूमते हैं, लक्ष्मी जी किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं घूमती है, पति के साथ नहीं घूमती है। देख लीजिए आप, अपने अपने पत्नियों के साथ सभी हैं। इस शिक्षा मिलती है चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, सभी अपनी अपनी मर्यादा में रहें और रह करके भक्ति करें। माया का मतलब भूल जाना, भगवान को भूल जाना। लेकिन आप किसी भी आश्रम में रहें, भगवान के साथ जुड़े रहें, नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन बिताएं। तो ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान की रक्षा भगवान करते हैं। तो कभी कभी हम लोग की जो बुद्धि है वो चकरा जाती है। ऐसा कहा जाता है जब माया का प्रभाव आता है तो बुद्धि जो है बिल्कुल भ्रमित हो जाती है, वहां नहीं काम करती है, व्यक्ति मूड बन जाता है। यही माया की विचित्रता है। वासना का जो ज्वार आता है तो व्यक्ति बिल्कुल वहां पर उसकी बुद्धि नहीं काम करती है, भ्रमित हो जाता है और आवेश में आकर के गलत कार्य कर डालता है। इसलिए कहा जाता है कि मन को कभी छूट नहीं देना चाहिए, खाली मन शैतान का। हमेशा भागवत पढ़ते रहें, गीता पढ़ते रहें, सेवा में लगे रहें तो हम लोग ऐसे इंगेज रहेंगे। तो ज्ञान की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, भगवान ही तो ये सब बता रहे हैं। वेदव्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, 17वें अवतार हैं। या एक बार भगवान मछली का रूप धारण करके राजा सत्यव्रत को ज्ञान दिए, परम ब्रह्म सांख्य योग का ज्ञान दिए। भागवतम के अष्टम स्कंद में कथा आती है, इसमें प्रभुपाद जी ने दिया है हयग्रीव और मत्स्य अवतार। सोने की मछली भगवान बने थे और प्रलयकालीन समुद्र में वे विहार किए और अपने भक्त राजा सत्यव्रत को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिए। तो जब ज्ञान लुप्त हो जाता है तो ज्ञान की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भद्रासव जी यही कह रहे हैं कि प्रभु जब ज्ञान लुप्त हो जाता है तो आप अवतार लेकर के पुनः ज्ञान को आप संचारित करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो जब जब ज्ञान लुप्त हुआ है तब तब भगवान अवतार लेकर के ज्ञान को प्रकाशित किए हैं। प्रस्तुत श्लोक का यही भाव है। तो हयग्रीव का अवतार लेकर भगवान ने वेद को ब्रह्मा जी को प्रदान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी इस जगत के प्रथम प्राणी हैं और ब्रह्मा जी के ही माध्यम से जगत का विस्तार होता है। तो प्रथम भागवतम का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है, भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने मध्वाचार्य को दिया। आप देख लीजिए इस प्रकार से ये परंपरा है। तो उसी प्रकार से जब ज्ञान लुप्त हो जाता है तो भगवान अवतरित होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि ज्ञान लुप्त न हो, ज्ञान सदैव बने रहे, वैष्णवों के संग में रहना चाहिए। वेणुषत संग विवेक न होई, वैष्णव के संग में रहना चाहिए। अगर वैष्णव का संग छूट जाएगा तो आपका ज्ञान लुप्त हो जाएगा, बिल्कुल आप भूल जाएंगे, झोली माला सब कुछ त्याग देंगे, फिर ईटिंग स्लीपिंग बेटिंग डिफेंडिंग में लग जाएंगे। इसलिए वैष्णव के संग में रहें, साधु संग, साधु संग, वैष्णव का सत्संग करें। हमेशा सत्संग में रहेंगे और भक्ति करेंगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी। तो भगवान अवतार लेकर के ज्ञान की रक्षा करते हैं और यही आदेश देते हैं। चेतन महाप्रभु का अवतार लेकर भगवान ने यही आदेश दिया कि वैष्णव के संग में रह करके जीवन बिताइए, वैष्णव के संग में रहने से भगवान की भक्ति बनी रहती है। तो भक्ति महारानी के अंग हैं, पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। तो ज्ञान और वैराग से, कुसंगत से वैराग, याद रखिए इस बात को, कुसंगत से वैराग लेना है। वैराग लेने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, पूरे परिवार को छोड़ दीजिए, ये बातें नहीं कही जा रही है। जो हमारी संस्था है ये सबको भगवान से जोड़ती है, जोड़ती है कि आप सभी भगवान की भक्ति करें। लेकिन वैराग किसे लेना है? कुसंगत से। कुसंगत क्या है? मांस भक्षण करना, परिस्त्री गमन करना, धूम्रपान करना, ये जो कली के जो चार महान पाप है ये कुसंगत है, इससे वैराग लेना है। चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, सबको भगवत भक्त बनाइए, भगवान से नाता जुड़ाइए और उसके जीवन को सफल बनाइए। इसके लिए संस्था है, इस्कॉन खुला हुआ है, प्रचार किया जाए, भगवत भक्ति का ज्ञान वितरण किया जाए और सभी लोग भगवत भक्त बने और अपने जीवन को सार्थक बनाए। तो प्रस्तुत श्लोक का निचोड़ यही रहा कि हे प्रभु, आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, वेद को दिया, तो आप सत्य संकल्प हैं, आप जो कहते हैं वे करते हैं और आपको हम सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।